28 جنوری دن سوموار دن بھر میں ہوں ریحان فضل۔ کرناٹک کے مکھیمنتری کمار سوامی نے کہا کانگریس کا رخ نہیں بدلا تو اپنا پد چھوڑنے کے لیے تیار۔
آئی ایم ناٹ کنسرنڈ پرسن فار دوز تھنگز، سیم تھنگ اف دے وانٹ ٹو کنٹینیو آئی ایم ریڈی ٹو سٹیپ ڈاؤن۔
بھارت نے نیوزی لینڈ کو ہرا کر ایک دیوسیہ شرنکھلا جیتی۔
لوکنگ ایٹ دی فرسٹ 3 گیمز وی ور لوکنگ ٹو ون ایٹ لیسٹ 2 ٹو سیٹ اپ دی سیریز ویل، بٹ دی فیکٹ دیٹ وی ہیو ون 3 از ان آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ۔ اینڈ دی تھنگ دیٹ سٹینڈز آؤٹ فار می از دی ریلنٹلیس intensity with which the guys have played throughout these 3 games.
Honge aapke patron ke uttar bhi, lekin pehle vishwa samachar.
BBC samachar Bhumika Rai se. कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा है कि अगर कांग्रेस के विधायकों ने सिद्धारमैया को अपना मुख्यमंत्री बताना बंद नहीं किया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कुमारस्वामी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने यमन में गहराते मानवीय संकट को लेकर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो यमन में अकाल की स्थिति बन सकती है। यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत का कहना है कि मुश्किल हालातों की वजह से देश के प्रमुख हुदैदा बंदरगाह पर संघर्ष विराम को पूरी तरह से लागू करने में देरी हो रही है। BBC के एक संवाददाता ने बताया कि उन्होंने यमन में इतने कमजोर बच्चे को रोते हुए देखा है जो आराम से रो भी नहीं पा रहे थे। सलीम जफर हुदैदा ऑफिस ऑफ इस्लामिक रिलीफ के प्रमुख हैं। वो कहते हैं कि राहत बचाव काम में लगे कर्मचारी रोजाना अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा,
All the team here are really determined to keep doing the good job in the humanitarian assistance despite
यहाँ पर काफी खतरा है, इसके बावजूद पूरी टीम जरूरतमंदों को पूरी निष्ठा से मदद पहुंचाने में जुटी है। डर तो लगता है क्योंकि जो एक बार बाहर गया उसके वापस सुरक्षित आने की गारंटी नहीं होती। हमारे परिवार हमारी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमने यमन के उन लोगों को खाना नहीं पहुंचाया, तो वो भूख से मर जाएंगे। ये थे हुदैदा ऑफिस ऑफ इस्लामिक रिलीफ के प्रमुख सलीम जफर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका का कहना है कि अफगानिस्तान के लिए उनके राजदूत और तालिबान के बीच मसौदा शांति समझौते को लेकर सहमति बन गई है। जलमाए खलीलजाद ने हाल ही में तालिबान के साथ 6 दिन लंबी बातचीत की थी। इस बैठक के बाद उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी तालिबान को नए दौर की शांति वार्ता के लिए न्योता दिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा, लंबे वक्त तक शांति बनाए रखने के लिए हमारे पास योजना और रोड मैप है। हम शांति बनाए रखने और किसी भी तरह के तनाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कुछ मूल्यों से हम समझौता नहीं कर सकते। इसमें देश की एकता, क्षेत्रीय अखंडता, एक शक्तिशाली और सक्षम केंद्र सरकार और देश के लोगों के मूलभूत अधिकार शामिल हैं। ये थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के शब्द। पिछले साल मार्च में काठमांडू एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए बांग्लादेशी विमान के मामले में जांचकर्ताओं का कहना है कि विमान का कैप्टन तनाव में था। जांचकर्ताओं के मुताबिक विमान उड़ाते वक्त कैप्टन भावनात्मक रूप से काफ़ी परेशान था। इस विमान दुर्घटना में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या की जांच कर रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने अंकारा में तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की। एनियस कलामार मुख्य अभियोजक से भी मुलाकात करने वाले हैं। जमाल खाशोजी की अक्टूबर में इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के दूतावास में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ये मामला पूरी तरह दुनिया में छा गया और चर्चा का विषय बन गया। नाइजीरिया के चीफ जस्टिस की बर्खास्तगी से नाराज देश के सैकड़ों वकीलों ने राजधानी अबुजा में विरोध प्रदर्शन किया। 2017 में पद ग्रहण करने से पहले अपनी संपत्ति की सही जानकारी न देने के आरोप के बाद शुक्रवार को नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने वाल्टर ओनोगोन को बर्खास्त कर दिया था। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करके रेहान फतल का। कर्नाटक में जारी सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी का एक बड़ा बयान सामने आया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कुमारस्वामी ने कहा है कि अगर कांग्रेस नेता हद पार करते रहे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कुमारस्वामी के इस बयान से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
लोकसभा के चुनाव अभी 3 महीने दूर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तनाव की शुरुआत हो गई है। थोड़े हफ्तों से कांग्रेस के विधायक और खासकर सिद्धरामैया के समर्थक ये बयान देते आ रहे हैं कि उनके लिए तो सिद्धरामैया ही अभी भी मुख्यमंत्री हैं। कल फिर से वही बात एक जनसभा में सिद्धरामैया के समर्थक मंत्री और विधायक ने दोहराई, और जब यह सवाल मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी से पूछा गया तो वो भड़क गए और बोले,
आई एम नॉट कंसर्न पर्सन फॉर दोज थिंग्स, सेम थिंग इफ दे वांट टू कंटिन्यू आई एम रेडी टू स्टेप डाउन।
इस तरह के बातों को कांग्रेस के नेताओं को देखना है। आप उनसे इस सवाल का जवाब पूछिए, अगर वो यही बात दोहराना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं पद छोड़ने के लिए। वो गठबंधन की रेखा पार कर रहे हैं। ये थे एच डी कुमारस्वामी के शब्द। हर किसी को पता है कि कुमारस्वामी भावुक बहुत जल्द हो जाते हैं, लेकिन आज के बयान का असर कांग्रेस के नेताओं पर फौरन देखने को मिला। हालांकि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, पर एआईसीसी के महासचिव और कर्नाटका के प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने फौरन ट्विटर के जरिए 2 बयान भेज दिए। पहला था कि उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष को फौरन उन विधायकों को सूचना देने का आदेश दिया, और दूसरा कि कांग्रेस कुमारस्वामी को ही मुख्यमंत्री मानती है। तो जाहिर है कि जब गठबंधन सरकार में इस तरह के सवाल उठते हैं तो सरकार के मजबूती पर भी एक सवाल अहम हो जाता है। हमने यह सवाल राजनीतिक विश्लेषक और जैन विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर संदीप शास्त्री से पूछा। उन्होंने कहा,
मुझे तो नहीं लगता ये तो बस सेबर रैटलिंग हो रहा है
टिकट लोकसभा के टिकट के बातचीत से पहले।
हाँ, दोनों को तो दोनों को अलायंस चाहिए, एक दोनों में से कोई भी अलायंस के बिना रह नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर सकते इस पर।
दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने एक विवादास्पद बयान के बाद एक और बयान दिए हैं। पहले उन्होंने कहा कि ताजमहल असल में शिव मंदिर था और उसको किसी मुस्लिम ने नहीं बनाया था। जब उनके बयान पर राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने प्रतिक्रिया की तो हेगड़े ने एक और बयान दिया। हमें हमारे समुदाय में क्या हो रहा है उस पर नजर रखने की सख्त जरूरत है। हिंदू महिलाओं को किसी भी हालात में सुरक्षा देना चाहिए, अगर किसी का हाथ उन पर लगा तो वो हाथ नहीं रहना चाहिए। ये थे अनंत कुमार हेगड़े के शब्द। मतलब ये कि चुनाव का माहौल एक तरह से बन रहा है और बनाया भी जा रहा है, शायद सीटों की बातचीत के लिए या सीटें जीतने के लिए। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यमन में मानवीय परिस्थितियां खतरनाक हो चली हैं और वहां पर अस्थिरता के और प्रयास सूखे को बढ़ावा दे सकते हैं। वहां मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि उसने वहां इस तरह के कुपोषित बच्चों को देखा है कि वो रो तक नहीं सकते। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा विवरण सुनिए प्रज्ञा सिंह से।
सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन सेना लाल सागर से होते हुए यमन के हुदैदा बंदरगाह की ओर बढ़ रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। लाल सागर के पूर्वी छोर वाले इलाके पर यमन की सेना और उसके स्थानीय सहयोगियों का कब्जा है। दिसंबर के महीने में जब सीज फायर का ऐलान हुआ था तब यमनी सेना और सऊदी के सहयोगी सैनिक यहीं रुक गए। हूथी विद्रोही भी यहां से थोड़ी ही दूर हैं और 1 मील के दायरे में ही संयुक्त राष्ट्र की एक टीम भी है जो इस युद्ध विराम की निगरानी कर रही है, पर यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। सालों से चल रहे युद्ध की वजह से ये देश भूखमरी की चपेट में है। ऐसे हालात में ये गेहूं बड़ा कीमती था जिससे लगभग 40 लाख लोगों की भूख मिट सकती थी। इसे संयुक्त राष्ट्र की मदद से जमा किया गया था, पर हमारे जाते ही यहाँ एक मोर्टार गिरा और सब कुछ जलकर खाक हो गया। यमन के लड़ाकों ने इसके लिए हूथी विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। इधर गठबंधन सेना भी अपने सैनिकों और साजो सामान के साथ तैयार हो रही थी ताकि शांति समझौता टूटने पर वो फिर से हमला करने के लिए तैयार रह सके। संयुक्त अरब अमीरात के टास्क फोर्स कमांडर कर्नल सईद सलीम कहते हैं,
गठबंधन सेना की तैयारी है कि यहाँ सेना की संख्या अच्छी खासी हो ताकि वो हूथी विद्रोहियों को काबू में कर सके। हमने सैनिक नहीं बढ़ाए हैं, पर हूथी अगर सीज फायर तोड़ते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस हमें जानकारी दे देती है।
कर्नल सईद सलीम के शब्द, अभी भी कई जिंदगियां इस युद्ध की भेंट चढ़ रही हैं। मरीजों की संख्या कम हुई है पर दर्द कम नहीं हुआ है। 20 साल की हायद अपने घर में ही थी तभी गोली उनके सिर को छूते हुए निकल गई। इससे उनकी जान भी जा सकती थी। हायद कहती है,
मेरे बच्चे डरे हुए हैं। लड़ाई हमारे घर के भीतर तक पहुंच गई है। हम युद्ध के बीच जी रहे हैं।
हायद के शब्द, युद्ध के दौरान दिल मजबूत करना होता है। ये 6 महीने की अदुवा है जिसके नाम का मतलब है रोशनी, पर उसकी आंखों में रोशनी ना के बराबर है। इन्फेक्शन में उसकी एक आंख चली गई और वो कुपोषण की शिकार भी है। उसकी जिंदगी यमन के हालात जैसी हो गई है जिसे शांति का इंतजार है।
एक बार फिर लौटते हैं भारत की तरफ। असम में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को गुवाहाटी में चरमपंथी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी एनडीएफबी के प्रमुख रंजन देमारी समेत 14 लोगों को दोषी ठहराया है। गुवाहाटी, कोकराझार, बोंगाईगांव और बरपेटा में किए गए इन बम धमाकों में 88 लोग मारे गए थे जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अदालत इस मामले में अब 30 जनवरी को सजा सुनाएगी। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
स्थानीय भाषा में बोल रहे ये सभी लोग सीरियल बम धमाकों में दोषी ठहराए गए लोगों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। दरअसल साल 2008 के 30 अक्टूबर के उस दिन को कोई भी भुला नहीं पाया है। असम के लोगों ने ऐसा दिन अपने जीवन में शायद ही कभी देखा होगा। 30 अक्टूबर के दिन प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन एनडीएफबी ने गुवाहाटी, कोकराझाड़, बोंगाईगांव और बरपेटा में एक के बाद एक कुल 18 धमाके किए थे। इन धमाकों में 88 लोग मारे गए थे और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। इन बम धमाकों के 10 साल बाद सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश अप्रेस चक्रवर्ती ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत चरमपंथी संगठन एनडीएफबी के प्रमुख रंजन देमारी और उनके 14 साथी कैडरों को दोषी ठहराया है। अदालत के इस फैसले के बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर टीडी गोस्वामी ने कहा, आज ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला आया है इसमें 15 लोगों को दोषी ठहराया गया है। इन दोषियों में एनडीएफबी के प्रमुख रंजन देमारी भी शामिल है। इस मामले में जो भी सजा होगी वो 30 जनवरी को सुनाई जाएगी। हमने अदालत से सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। ये थे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर टीडी गोस्वामी के शब्द। सीबीआई अदालत इस मामले में अब 30 जनवरी को सजा सुनाएगी। हालांकि इन चरमपंथी कैडरों की तरफ से अदालत में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मानस सरनिया कहते हैं,
राइट टू कन्विक्शन दिया है तो सेंटेंस के लिए पुरसो होगा। इसे तो एविडेंस तो नहीं है, जांच ने क्या करके दिया है तो इसे क्या बोलेगा, तो अपील करेगा, इसे देने का एविडेंस ही नहीं है। आगे तो हम हाईकोर्ट में अपील करेगा। नहीं नहीं, सबूत क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। उसका सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसका पास है, लेकिन क्या दिया? वो लोग प्रूफ नहीं है ना।
असम में सक्रिय अलगाववादी संगठन एनडीएफबी बीते 4 दशकों से बोडो लोगों के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र की मांग पर सशस्त्र संघर्ष करते आ रहा है। इस दौरान संगठन ने कई हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया है। मई 2005 में इस चरमपंथी संगठन का एक गुट केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता के तहत संघर्ष विराम समझौता कर लिया था, जबकि एनडीएफबी के कुछ कैडर आज भी हथियार उठा रखे हैं। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में आने वाले मरीजों से उनके धर्म की जानकारी लेने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मरीजों का कहना है कि आखिर बीमारी के इलाज में धर्म का क्या काम। दूसरी ओर प्रबंधन का दावा है कि ये जानकारी संसद में होने वाले सवालों को ध्यान में रखकर एकत्रित की जा रही है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के एम्स में मरीजों के धर्म संबंधी जानकारी एकत्र किए जाने का मामला ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली के एम्स में कार्यरत वरिष्ठ डॉक्टरों से धर्म और जाति का विवरण मांगा गया है। हालांकि दिल्ली स्थित एम्स ने कहा है कि वरिष्ठ डॉक्टरों से उनकी जानकारी के लिए जो फॉर्म वितरित किया गया था उसमें जाति और धर्म का विवरण गलती से जोड़ दिया गया था, जिसका पता चलने के बाद तुरंत उसे हटा दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय दानी का कहना है कि राज्य में मरीजों की धर्म संबंधी जो जानकारी एकत्र की जा रही है वह केंद्रीय स्तर पर हो रहा है।
आरटीआई में भी कभी आ जाता है, कभी पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस आते हैं कि कितने एससी और एसटी और कितने डिसेबल्ड लोगों को या कितने अनुसूचित जनजाति के लोगों को सेवाएं दी गई, कितने का ऑपरेशन हुए, तो वो डाटा के लिए वो चीजें जो है उसके रिकॉर्ड में रहता है। और ये निक का ही बना हुआ वो फॉर्मेट रहता है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है उसी का ही सॉफ्टवेयर है जिसपे की ये सब चीजें डाटा के रूप में इसलिए उसमें डालते हैं।
लेकिन क्या यह मरीजों की निजता का हनन नहीं है?
नहीं, इसमें निजता के उल्लंघन का कोई विषय नहीं है। वो डाटा कहीं पे किसी को तो ट्रांसफर नहीं होता, और अगर आरटीआई भी आती तो व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाती, नाम वाइज नहीं दिया जाता। जब भी देते हैं हम संख्यात्मक देते हैं, मान लो इतने इनको हमने किया, माइनॉरिटी कम्युनिटी पूछते हैं कि आपने मुस्लिम समुदाय के कितने लोग हितग्राही हुए।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता वंदना अग्रवाल इसे एक गंभीर मामला मानती हैं। वंदना अग्रवाल का कहना है कि केंद्र के पास ऐसी कौन सी योजना है जिसे वह धार्मिक आधार पर लागू करने वाली है।
मरीजों से उनका ब्लड ग्रुप पूछा जाए या उनका लिंग पूछा जाए, आर्थिक स्थिति भी समझ में आती, परंतु उनसे उनका धर्म पूछना, ये कौन सी योजना लागू करना चाहती केंद्र सरकार की वो धर्म आधारित डेटा इकट्ठा कर रही है, ये तो आधार कार्ड वाली स्कीम का ही एक एक्सटेंशन नजर आ रहा है।
राज्य में नागरिक संगठन भी एम्स द्वारा मरीजों की धार्मिक जानकारियों को एकत्र किए जाने को गलत मानते हैं। छत्तीसगढ़ संयुक्त नागरिक संघर्ष समिति के संयोजक अखिलेश एडगर कहते हैं,
इस प्रकार की जानकारी इकट्ठी करना तो गलत है, पूरी तरीके से अतार्किक है, गलत है। मरीज तो मरीज है ना, उसका किसी जाति धर्म से क्या संबंध है। धर्म से संबंधित जानकारी तो इकट्ठी करनी ही नहीं चाहिए, न मरीज की न डॉक्टर की।
कुछ संगठनों का कहना है कि वे इस मामले को अदालत तक ले जाएंगे। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो धर्म, बीमारी और इलाज के रिश्तों को लेकर आने वाले दिनों में कुछ नई बहसें भी शुरू हो सकती हैं। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
पहली बार मतदान क्या है अरमान, हमारी खास सीरीज माई वोट काउंट्स में हम बात करेंगे ऐसी युवतियों से जो आने वाले चुनाव में पहली दफा वोट डाल पाएंगी। पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल करने वाली ये लड़कियां चुनाव से क्या उम्मीद रखती हैं और वोट की ताकत के बारे में उनकी क्या सोच है, आज बात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली 18 साल की अंकिता की, जिनकी जिंदगी पर दंगों ने बुरा असर डाला। सुनते हैं अगले चुनाव से वो क्या उम्मीद रखती है।
हमारे यहाँ जो दंगा फसाद हुआ था उसमें ना अपनी जिंदगी में पहली बार गोली चलते हुए देखी, और उसका जो डर है मैं आज तक नहीं भूली। मेरा नाम अंकिता है और मैं 18 साल की हूँ, अस्थिति सामाजिक संस्था में काम करती हूँ। 2019 के जो आने वाले चुनाव हैं मैं उस पार्टी को वोट दूंगी जो ये दंगे फसाद हो रहे हैं इनको रोके, क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो महिलाओं पर और लड़कियों पर ही पड़ता है, ज़्यादा तकलीफ महिलाओं को और लड़कियों को ही सहनी पड़ती है। हमारे गाँव में जो दंगा फसाद चल रहा था उसकी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई। ऐसा नहीं कि मेरी पढ़ाई भी रुकी और मेरे घर को ना मेरी शादी भी करने को कहा, पर मैं ना अपने हक के लिए मतलब कि अपने घर को से झगड़ा भी किया। मुझे इस बात का बुरा लगता है, जैसे हम शिक्षा पर काम कर रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर और महिलाओं के हिंसा को लेकर, सारी इन मुद्दों को छोड़कर दंगे फसाद की टेंशन में ही लगे रहते हैं। अगर हम उन मुद्दों पर ही काम नहीं करेंगे तो ये भेदभाव कैसे खत्म होगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो सरकार है ये दंगा फसाद रोक रही है। कभी कोई नहीं चाहता, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि दलित आगे निकले और दलितों को ही मतलब ही नीचे दिखाया जाता है। आने वाले 5 सालों में मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, और जो हमारे गांव की और दूसरे गांव की जो लड़कियाँ हैं जो नहीं पढ़ पा रही है, मैं उन्हें आगे पढ़ाना चाहती हूँ और उनको जागरूक करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो आने वाले टाइम में कि कोई भी लड़की ड्रॉप आउट रहे और वे आगे ना पढ़ पाए, अपने हक के लिए ना बोले।
माई वोट काउंट सीरीज में की थी मुजफ्फरनगर की अंकिता। आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ स्टूडियो में हैं
सरोज सिंह।
तो सरोज जी, ईमेल्स हैं आपके पास, शुरुआत करिए।
तो अब शुरुआत करते हैं। जावेद इकबाल बलूचिस्तान से लिख रहे हैं, अंग्रेजी में इन्होंने लिखा है क्योंकि इन्हें हिंदी नहीं आती। उनका कहना है कि वो रेहान फजल और संदीप सोनी को बहुत अच्छे से सुनते हैं, उन्हें बहुत पसंद है, और पुराने जो बीबीसी के लोग थे उनकी उन्होंने बहुत तारीफ की है, मणिकांत ठाकुर जी की, रामदत्त त्रिपाठी जी की, और उनका कहना है कि वॉशिंगटन डायरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाए।
इतनी दूर से बलूचिस्तान से हमें ईमेल लिखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं ये भी बहुत हमें सुनकर अच्छा लगा, और जिन लोगों की आपने तारीफ की है उन तक हम आपकी तारीफ पहुंचा देंगे, और आगे भी हमें ईमेल इसी तरह भेजते रहिए।
अगला जो ईमेल है वो लिखा है रफीक इब्राहिम परकार ने, रत्नागिरी महाराष्ट्र से। इनका कहना है कि इंडिया बोल इन्हें बेहद पसंद है, लेकिन इंडिया बोल में फ़ोन नहीं लगता, और अगर फ़ोन लगता भी है तो आप उसे होल्ड पर छोड़ देते हैं, और अंत में जब उस शख्स को बोलने का मौका नहीं मिलता तो आप क्षमा कर उसे छोड़ देते हैं। उनकी एक राय है कि ज़्यादा वक्त दें इंडिया बोल को, और जो लोग इच्छुक हैं फ़ोन पर आने के लिए उनके फ़ोन नंबर पहले ही ले लें और उनको उसके बाद फ़ोन कर प्रोग्राम में शामिल करें।
परकार साहब, और परकार साहब के बहाने अपने सभी श्रोताओं से हम एक बार फिर ये अपना अनुरोध दोहराते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में टेलीफोन्स आते हैं, हमारे श्रोता इंडिया बोल कार्यक्रम बहुत सारे लोग हैं जो पसंद करते हैं और उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं को शामिल करें और सभी श्रोताओं को मौका मिले, लेकिन आप जानते हैं कि ये संभव नहीं है, हमारे पास एक सीमित समय है, उसी में ये कार्यक्रम करना पड़ता है। तो हम सभी श्रोताओं से यही अनुरोध करते हैं कि आप निराश न हो, और एक ही तरीका है कार्यक्रम में शामिल होने का, वो है फ़ोन करने का, तो फ़ोन करना आप जारी रखें, और निश्चित तौर पर मैं यही कह सकता हूँ कि हम पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश हम भी जारी रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सके।
अगला खत ले रही हूँ, शेख मुस्लिम है अररिया बिहार से, उन्होंने लिखा है रेहान फजल की विवेचना की तारीफ की है उन्होंने, और कहा उन्हें बेहद पसंद आया मुगले आजम पर जो उन्होंने विवेचना की थी, लेकिन उनका कहना है लास्ट में उन्होंने लिखा है हमसे पूछिए की कमी महसूस हो रही है।
हमसे पूछिए के बारे में अक्सर हमारे पास इस तरह की चिट्ठियां आती रहती हैं, और जाहिर है कि जब हम एक कार्यक्रम बंद करते हैं तभी हम दूसरा शुरू कर पाते हैं, क्योंकि दिन और समय तो उतने ही है, ऐसे में ये हमें तय करना पड़ता है कि अब हम क्या करें। तो गूगल के ज़माने में हमसे पूछिए कार्यक्रम, जिसमें कि आप सवाल पूछें और हम हफ्ते भर बाद उसका जवाब दें, उसकी जगह हमें लगा कि हमें इंडिया बोल जैसा एक कार्यक्रम करना चाहिए, या हमें विवेचना जैसे कार्यक्रम करने चाहिए जिसको सुन के लोगों को विस्तार से चीज़ें समझ में आए, अपनी बात कहने का मौका मिले। ये वजह है कि हमने हमसे पूछिए को अभी फ़िलहाल रोक रखा है, लेकिन आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, और हम तो अपनी वेबसाइट के ज़रिए लोग जो कुछ पूछ रहे होते हैं या उनके मन में जो सवाल होते हैं उनका जवाब देने की कोशिश लगातार करते रहते हैं।
अगला ईमेल राजस्थान भिरानी से मदनलाल लंबोरिया जी ने लिखा है, उनका कहना है कि सूर्यांशी पांडे, सर्वप्रिया सांगवान, मोहनलाल जोशी इन दिनों कार्यक्रम में क्यों नहीं आ रहे, इनके नहीं आने का कारण पूछा है, और दूसरी बात जो उन्होंने लिखी है वो है बीबीसी साइट पर लोकदल नेता अजीत सिंह को जाति से जोड़ना इन्हें अच्छा नहीं लगा।
इतने गौर से लोग कार्यक्रम सुनते हैं कि अगर कोई ट्रेनिंग पर चला जाए, कोई छुट्टी पर चला जाए, तो लोग उसको नोटिस करते हैं और पूछते हैं कि ये क्यों नहीं इनकी आवाज़ सुनाई दे रही। जाहिर है कि वो लोग दूसरे कामों में व्यस्त हैं, हर वक्त हर व्यक्ति प्रसारण नहीं कर सकता उसको, और भी दफ्तर में कई काम करने पड़ते हैं, लोग रिपोर्टिंग के लिए बाहर जाते हैं, लोग छुट्टियां लेते हैं, लेकिन सब लोग हैं जिन लोगों का आपने नाम लिया, सब हमारे साथ हैं और जब उनका प्रसारण होगा तो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो लौट आए हैं, वो सब यही हैं। दूसरी बात जो आपने कही अजीत सिंह के बारे में, असल में अजीत सिंह इस समय भी और उनके बेटे जयंत चौधरी, जिस तरह से हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के और ख़ास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावों में, जाट वोट जो है वो एक फैक्टर है जिसके बारे में हमें बात करनी थी, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के जो आम तौर पर किसान और जाट आबादी है, जो वोटर हैं, उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपना एक तरीका है, और उनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह हैं और अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी भी अब नेता हैं। तो हमें ये नहीं लगता, हम उनका कोई उनको हम सीमित नहीं करना चाहते या हम उनका अपमान नहीं कर रहे थे, लेकिन हम ये बता रहे थे कि वो निश्चित रूप से जाटों के सबसे बड़े नेता हैं, तो इस हिसाब से हम एक राजनीतिक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब घड़ी हमें इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए, चलते चलते हम आपको अपना पता बता दें ताकि आप हमें इसी तरह पत्र और ईमेल भेजते रहें। अगर डाक से चिट्ठी भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को लगातार तीसरे वनडे में हराते हुए सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। इस तरह भारत ने न्यूजीलैंड में 10 वर्ष बाद द्विपक्षीय सीरीज अपने नाम की है। इससे पहले उसने 2009 में ये सीरीज जीती थी। अभी इस सीरीज में 2 और मैच खेले जाने बाकी हैं। सुमरनप्रीत कौर की रिपोर्ट।
आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मुकाबला खेला गया माउंट मॉन्गेनुई में। भारत ने ये तीसरा मुकाबला अपने नाम किया 7 विकेट से। इस सीरीज में भारत की ये लगातार तीसरी जीत है। पहला मुकाबला हुआ था नेपियर में, जो भारत ने अपने नाम किया 8 विकेट से। दूसरा मुकाबला भारत ने अपने नाम किया 90 रन से, और अब तीसरा मुकाबला 7 विकेट से। मुकाबला कुछ ऐसे शुरू हुआ कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और डिसाइड किया कि वो करेंगे बल्लेबाजी। न्यूजीलैंड ने अपनी पारी में 243 रन बनाए। जवाब में भारत के बल्लेबाजों ने ना सिर्फ ये लक्ष्य हासिल किया बल्कि 245 रन बनाए सिर्फ 3 विकेट खोकर। भारत के रोहित शर्मा ने बनाए 62 रन, तो वहीं विराट कोहली ने बनाए 60 रन। न्यूजीलैंड में ही न्यूजीलैंड को हराया भारत ने। ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा वर्ल्ड कप में, ऐसा कहना है वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली का।
सीरीज को तो मैं ऐसे देखूंगा कि बहुत बेहतरीन तैयारी लग रही है भारत की। अगर आप देखें वर्ल्ड कप के लिए, वही उन्होंने खिलाड़ी ट्राई किए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा काम किया वही काम न्यूजीलैंड में उन्होंने जारी रखा है। और अगर आप देखें हर डिपार्टमेंट में भारत ने डोमिनेट किया है, और आज का मैच भी उसी तरह अगर आप देखें, किसी भी स्टेज पर आपको नहीं लग रहा था कि भारत कभी जो है मैच गंवा देगा।
तो इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए कहीं ना कहीं भारत की तैयारी अच्छी है। वहीं जीत के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा,
लुकिंग एट द फर्स्ट 3 गेम्स वी वर लुकिंग टू विन एटलीस्ट 2 टू सेट अप द सीरीज वेल, बट द फैक्ट दैट वी हैव वन 3 इज एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट।
हमने सोचा था हम पहले 2 मैच जीतेंगे, लेकिन 3 मैच जीतना तो बहुत अच्छी बात है। टीम के खिलाड़ियों ने 2 मैच जीतकर भी कहीं ढील नहीं दी और तीसरा मुकाबला अपने नाम किया। खिलाड़ियों ने ये बात जान ली कि अगर आपको कोई एडवांटेज मिला है तो उस मौके का और फायदा उठाया जाए।
तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे मोहम्मद शमी, जिन्होंने 3 विकेट लिए। आपको बता दें कि 10 साल बाद न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीती है भारत ने। 2009 में धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 3-1 से सीरीज जीती थी, जबकि पिछले वनडे सीरीज में भारत 4-0 से हार गया था।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि अगर कांग्रेस के विधायकों ने सिद्धरमैया को अपना मुख्यमंत्री बताना बंद नहीं किया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। संयुक्त राष्ट्र ने यमन में गहराते मानवीय संकट को लेकर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो यमन में अकाल की स्थिति बन सकती है। अमेरिका का कहना है कि अफगानिस्तान के लिए उनके राजदूत और तालिबान के बीच मसौदा शांति समझौते को लेकर सहमति बन गई है। पिछले साल मार्च में काठमांडू एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए बांग्लादेशी विमान के मामले में जांचकर्ताओं का कहना है कि विमान का कैप्टन तनाव में था। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे शाकिर आलम, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।